नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिटी को बोम्मनहल्ली से जोड़ने वाली येलो लाइन मेट्रो सेवा का भी शुभारंभ किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की दिशा तय करने के लिए तीनों सेना प्रमुखों को पूरी छूट दी गई थी। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के दुल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज से बहुत तेज बारिश की आशंका व्यक्त की। और रमेश बुधियाल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में केएसआर रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें बेंगलुरु बेलगावी, माता वैष्णो देवी कटरा अमृतसर और नागपुर पुणे वंदे भारत रेलगाड़ियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने रागी गुड्डा के निकट आरवी रोड स्टेशन पर येलो लाइन मेट्रो सेवा का भी उद्घाटन किया, जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी को बोम्मनहल्ली से जोड़ती है। श्री मोदी ने रागी गुड्डा से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक येलो लाइन मेट्रो में यात्रा भी की। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत की। इस अवसर पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री कर्नाटक में रेलवे के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 7,500 करोड़ रुपए रेलवे के डेवलपमेंट के लिए कर्नाटक को दे रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, कई नए प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल कर्नाटक में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए मोदी जी दृढ़ संकल्पित हैं और बहुत मोदी जी का प्रयास है कि कर्नाटक का रेलवे नेटवर्क आगे बढ़े।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई है। इससे लाखों श्रद्धालुओं को लाभ होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मैं इन सभी प्रोजेक्ट के लिए, वंदे भारत ट्रेनों के लिए बेंगलुरु, कर्नाटका और देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता, पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नागपुर पुणे के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक पर वंदे भारत ट्रेन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज वंदे भारत ट्रेन के वर्चुअल हरी झंडी दिखाने के समारोह में नागपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। ये राज्य में अब तक की 12वीं और नागपुर के लिए 4थी वंदे भारत ट्रेन है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस 881 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सबसे लंबी चलने वाली वंदे भारत ट्रेन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अभियान बताया है। उन्होंने कहा कि ये अभियान सैन्य सटीकता और राजनीतिक स्पष्टता का समन्वय था। कल IIT मद्रास में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तीनों सेना प्रमुख इस बात पर सहमत थे कि निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। तीनों सेनाओं को ऑपरेशन की दिशा तय करने की पूरी छूट दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीतिक दिशा और स्पष्टता पहली बार सेनाओं को देखने को मिली।
This is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of a hand-holding and kind of a free, no terms of restrictions, if I can say that. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground to kind of act as per their wisdom.
उधर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल अनिल चौहान ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और अभियान में समन्वय का प्रतीक है। जनरल चौहान ने सिकंदराबाद में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में 21वें हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स और वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए सशस्त्र सेनाओं में एकीकरण पर रणनीतिक दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भविष्य के संयुक्त अभियानों के प्रारूप का भी उल्लेख किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के डल क्षेत्र में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी का सुराग खुफिया जानकारी से मिला। दोनों ओर से गोलीबारी जारी है और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। 24 अप्रैल से 30 जून के बीच भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने के बाद पाकिस्तान को 127 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये आंकड़े इसी सप्ताह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में साझा किए गए। नुकसान के बावजूद पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध अब भी लागू हैं। भारत ने भी अपना हवाई क्षेत्र बंद किया था और कहा था कि संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए कोई भी कीमत ज्यादा नहीं होती। ये कदम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद उठाया गया था। आज विश्व शेर दिवस है। गुजरात एशियाई शेरों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि पोरबंदर के पास बर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य पारिस्थितिकी और शेरों के विकास की दिशा में प्रगति कर रहा है।
कभी एक समय शेरों का गौण आवास रहा बर्दा अभ्यारण्य अभी 17 शेरों और 25 तेंदुओं के साथ फल फूल रहा है, जो वर्षों के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रतीक है। वन विभाग द्वारा रेडियो कॉलर और रियल टाइम ट्रैकिंग तकनीक के उपयोग ने शेर संरक्षण को पहले से कई अधिक प्रभावी बना दिया है। सामुदायिक भागीदारी, विशेष रूप से स्थानीय मालधारी चरवाहों के प्रयासों ने शेर संरक्षण को वास्तव में समावेशी और नागरिक केंद्रित बना दिया है। पार्किंग, लाउंज और स्वच्छता जैसी पर्यटक सुविधाओं से बर्डा में इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। अब गुजरात में 891 शेर है, जिसमें से आधे से ज्यादा गिर के बाहर है। यह दिखाता है कि प्रोजेक्ट लायन के अंतर्गत आवास विस्तार ने स्थायी वन्य जीवन प्रबंधन के लिए नए मानक स्थापित किए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली BEML रेल हब निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी। रेल कोच निर्माण के ब्रह्मा कहे जाने वाले इस संयंत्र की स्थापना रायसेन जिले के उमरिया गांव में 60 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर की जाएगी। इससे 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका देश के अंतिम नागरिक को न्याय देने के लिए अस्तित्व में हैं। उन्होंने इन स्तंभों के बीच तालमेल और जुड़ाव पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक कदम से ये सुनिश्चित होना चाहिए कि न्याय जल्द और कम से कम कीमत पर उपलब्ध हो। न्यायमूर्ति गवई गुवाहाटी उच्च न्यायालय की नाहर लागून में स्थायी पीठ के नवनिर्मित न्यायालय भवन का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। रिपोर्ट में एक छात्रा को उसके आवासीय विद्यालय के रसोइये ने खाना मांगने पर उसे गर्म करछुल से जलाने का उल्लेख है। NHRC ने कहा कि यह घटना बिहार के जहानाबाद जिले के शकुराबाद इलाके में हुई। आयोग ने जहानाबाद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए नोटिस जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति VV गिरी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। VV गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज रोंगपो में प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत की शुरुआत की। नारी अदालत एक सामाजिक मंच है जिसे महिलाएं संचालित करती हैं। ये ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को पहुंच और अनौपचारिक न्याय उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना है, जिससे वे उन मुद्दों और विवादों से निपट सकें जो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और उन्हें औपचारिक न्याय प्रणाली की ओर न जाना पड़े। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 6-7 दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, बिहार, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए भी यही अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश जारी है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आज ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 15 और 16 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी रहेगा।
हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है और कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार राज्य भर में एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 359 संपर्क सड़कें आवाजाही के लिए अवरुद्ध हैं। वहीं 145 बिजली ट्रांसफार्मर और 520 पेयजल योजनाएं भी ठप हैं। रिपोर्ट के अनुसार मानसून सीजन में अब तक राज्य भर में वर्षा जनित हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 219 हो गई है, जबकि 37 लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा इस मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में 1988 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का भी नुकसान आंका गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के बाद उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में आज 6 दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी हैं। पुलिस के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में भोजन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी है। और अधिक ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच सुगम बनाने के लिए मूसलाधार बारिश और प्राकृतिक आपदा के कारण अवरुद्ध सड़कों और पुलों की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। उत्तरकाशी पुलिस के अनुसार गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी लिमचागाड़ के पास बेली ब्रिज निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। साथ ही सोनगढ़, देवरानी, हर्षिल, धराली और अन्य स्थानों पर अवरुद्ध गंगोत्री हाईवे को सुचारू करने का कार्य तेजी से चल रहा है। सरकार का कहना है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, संचार और पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने आज देहरादून, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और शेष जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राज्य में 14 अगस्त तक भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि संडे ऑन साइकिल पहल ने फिट इंडिया अभियान को एक बड़े आंदोलन में बदलने में मदद की है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया कार्यक्रम में भाग लेते हुए ये बात कही।
मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट आज देश में संडे ऑन साइकिल के रूप में एक बड़ी मूवमेंट बन चुकी है। आज सारे देश में 50,000 से अधिक गांव में पंचायत प्रतिनिधियों ने संडे ऑन साइकिलिंग करके देश को फिट इंडिया का संदेश दिया है और मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट के साथ अपने गांव को जोड़ा है।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी के त्यागराज स्टेडियम में तिरंगा दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए श्री सूद ने कहा कि 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में 7,900 बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर इस दौड़ में भाग लिया।
प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आह्वान पर दिल्ली तिरंगामय होने जा रही है। आने वाले दिनों में दिल्ली की बेटियां साइकिल पर तिरंगा लेके निकलेंगी और उसके उपरांत अलग अलग स्कूलों से एक ही जगह कनॉट प्लेस में हजारों छात्र तिरंगे के नीचे इकट्ठा होंगे।
तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप की ओपन प्रो श्रेणी में रमेश बुधियाल पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कांस्य पदक जीता। स्पर्धा में कोरिया के कानोवा हीजेई को स्वर्ण और इंडोनेशिया के पजार अरियाना को रजत पदक मिला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिटी को बोम्मनहल्ली से जोड़ने वाली येलो लाइन मेट्रो सेवा का भी शुभारंभ किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की दिशा तय करने के लिए तीनों सेना प्रमुखों को पूरी छूट दी गई थी। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के दुल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज से बहुत तेज बारिश की आशंका व्यक्त की और रमेश बुधियाल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।